ओम शांति। आपका इस शाम के सत्र में स्वागत है। आपके कार्यक्रम में जिसका समावेश नहीं किया है वो मेडिटेशन कॉन्सर्ट के पहले हम लोग नृत्य परफॉर्मेंस भरतनाट्यम का आनंद लेंगे। ऐसा कहा गया है कि चेंज ऑफ वर्क इज रिक्रिएशन। सुनने के साथ साथ हम अब देखना भी शुरू करें तो उसके बाद सुनने का हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है। इसके बाद के सेशन में भी आपको अंतर्मुखता में हम ले जाएंगे और पूरा का पूरा सेशन ही रिफ्लेक्टिव सेशन है, आपके अंतर्मुखता में जाना है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंटरल्यूड के रूप में मैं आपके सामने एक सुंदर डांस परफॉर्मेंस हमारी बड़ौदा की बहनें आई हैं लेके आप सबके लिए, तो उनको मैं निमंत्रण दूंगा। पहले एक मिनट एकदम हम संपूर्ण शांति में बैठें, अपने आप को जहां भी घूम रहे हो मन से वहां से इस हॉल में अपनी सीट में अपनी देह में और बने तो अपनी भ्रुकुटी के मध्य में लाके स्थिर करें और अपने उस परम तत्व को याद करें। उनकी स्मृति में कुछ सेकंड हम बिताएंगे, परमात्मा स्मृति के लिए साइलेंस में बैठेंगे। शांति। भरतनाट्यम की प्रस्तुति बड़ौदा से आई हुई पीके रीटा, वासंती और दक्षा। पीके रीटा बड़ौदा से आई हैं, उन्होंने पीएचडी इन भरतनाट्यम किया हुआ है। वासंती बहन और दक्षा बहन दोनों डांस टीचर्स हैं। आपके समक्ष वो भरतनाट्यम शिव शंभो स्वयंभू, इन शब्दों पर आपके बीच में वो नृत्य पेश करेंगे, भरतनाट्यम पेश करेंगे। अभी उनके लिए म्यूजिक ऑन किया जाए, भरतनाट्यम का नृत्य उसका संगीत शुरू किया जाए। बहनें म्यूजिक के साथ साथ बाद में ही प्रवेश करने वाली हैं। मैं बीके रीटा, वासंती बहन और दक्षा बहन का स्वागत करता हूं, उन्हें निमंत्रण देता हूं। Thank you.
Come on. दिमी तक दिमी की टकिट तोम 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 सरी की टक की टक तोम दिमित दिमित तक तरी की टक तोम 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 सरी की टतरी की टक तोम
से निवेदन है प्लीज मंच पर ही रहें, प्लीज प्लीज मंच पर ही आएं। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन है इन तीनों बहनों का मेमेंटो द्वारा सम्मानित करें। इन बहनों ने जो कमाल की है उन्होंने हमारे अस्तित्व को सिर्फ आंखों तक सीमित कर दिया। वैसे हम सारे शरीर में जीते हैं लेकिन इन्होंने तो हमारी आंखों तक ही हमको सीमित कर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया, कुछ रहने ही नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी मेहनत इस समारंभ की शोभा बन चुकी है। धन्यवाद। आप सबकी अनुमति के साथ अपेक्षित अनुमति है कार्यक्रम में थोड़ा सा फर्क किया जा रहा है। आप यहां से जब विदाय लें तब उस मेडिटेशन कंसर्ट का स्वाद लेके निकलें। उसके पहले ही मैं निवेदन करता हूं कि शीलू बहन जो हमारे बीच में कार्यक्रम पेश करने जा रही हैं, इस यज्ञ का इतिहास, उसके लिए हम सब मन से सज्ज हों। मैं छायाबेन से निवेदन करता हूं कि आगे के कार्यक्रम का संचालन वे स्वयं करें।
ओम शांति। हम राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। तो आज दिन तक हम कुछ साइंस रिसर्च, आर्ट एंड कल्चर के बारे में सुने हैं, लेकिन जिस संस्था पर हम आए हैं तो शुरुआत कैसी हुई, कि जो व्यक्ति जिनको हम फाउंडिंग फादर कहते हैं तो उनके मन में क्या क्रांति आई, तो जिस क्रांति के कारण परमात्मा का कार्य उन द्वारा चला और आज दिन तक चलता आया। तो देश विदेश हर जगह ब्रह्मा कुमारी इसकी एक्टिविटीज चलते आए हैं। तो हम आज उस विशेष व्यक्ति और इस यज्ञ की इतिहास के बारे में सुनेंगे। तो इस इतिहास को हम सब के बीच शेयर करेंगे ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शीलू बहन जी। हम फिर से बहन जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। तो मैं शशि बहन से निवेदन करती हूँ कि दीदी जी का फूलों से और बैट से स्वागत करें। थैंक यू शशि बहन। तो जैसे कहावत है, एवरी पर्सन हैज गॉट अ यूनिक पर्सनैलिटी। तो हर एक व्यक्ति में कुछ यूनिकनेस है, कुछ विशेषता है। तो हमने देखा शीलू दीदी में एक बहुत ही खासियत है, विशेषता है, उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है और जो मन तक छू लेता है, तो ऐसी विशेषता उनमें पाई है। तो आज दीदी जी हमारे सम्मुख है, ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी, वरिष्ठ राज्य प्रशासिका 1976 से समर्पित है, राष्ट्रीय संयोजिका है शिक्षा प्रभाग के, तो राष्ट्रीय संयोजिका है जीवन मूल्य कार्यक्रम के, संयोजिका है राज्य प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वक्ता है, लोकप्रिय वक्ता भी है। आपने हजारों लोगों को राज्यों का ज्ञान दिया है, देश विदेश में सुनी संचार चैनल द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैलाया है, आध्यात्मिकता, तनाव मुक्त जीवन, स्वप्रबंधन, मूल्य शिक्षा तथा ध्यान, इन विषयों पर आपने बहुत ही अच्छे शेयरिंग की है। वैज्ञानिकों, शिक्षकों, पत्रकारों, राजनीतिकों, डॉक्टर्स के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान का पहलू बहुत अच्छी तरह से उजागर करती हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका में वक्ता के रूप में प्रवासन किया है। अंग्रेजी, हिंदी और सिंधी भाषा में एक्सपर्ट हैं। आपका जन्म 1948 में मुंबई में हुआ। 11 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, राज्यों के अभ्यास द्वारा मन की एकाग्रता और बुद्धि की प्रखरता प्राप्त की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1969 में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से स्नातक हुई। तो 21 वर्ष की अवस्था में आपने अपना जीवन संस्था में समर्पित किया। 1970 और 74 के दौरान बैंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद तथा मुंबई में सेवाएं थी। 74 से 76 के दौरान ईस्ट अफ्रीका एंड मॉरिशस में अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त बनी। तो ऐसे दीदी जी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी का हम फिर से स्वागत करते हुए, तो हम ये कहें कि आपकी मधुर वाणी और यज्ञ की इतिहास की शेयरिंग से हम सबको लाभान्वित करें। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शीलू बहन जी।
ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ फिर से ओम शांति। पिछले 3 दिनों से आप इस शांति वन परिसर में रहकर यहाँ पर जो शिक्षाएं मिलती है, जो बताया जाता है, उसे सुनकर बहुत कुछ अनुभूति करके ये तो समझ ही गए होंगे कि आप सब कहाँ आए हैं। ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, ये कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहाँ कोई कथा वार्ता चलती हो, कोई सत्संग हो रहा हो, कोई गुरु महात्मा जी बैठे हो या पूजा पाठ चलता हो, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो आपके मन में ये विचार चलता होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसके द्वारा हुआ, और आज इतना लंबा सफर इन्होंने तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो कैसे पहुँचे। तो हमारे पास उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ मेरा अपना निजी अनुभव भी है, क्योंकि जैसे बताया 1959 दिसंबर से मैं संस्था से जुड़ी, सो इट इज मोर देन 54 इयर्स। पिता श्री ब्रह्मा बाबा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं, उनसे भी बहुत सुंदर संपर्क हुआ। जगदम्बा सरस्वती हमारी इस यज्ञ की माँ हम कहते हैं, तो इस अलौकिक मातृपिता से, जिनका आप यहाँ फोटो भी देख रहे हैं, कैसे इनसे संपर्क हुआ और हमारा जीवन बदल गया। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और हम इसे यज्ञ कहते हैं, ये यज्ञ है। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसी प्रकार इस यज्ञ में भी हम बुराइयों की आहुति देते हैं। तो इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, पिता श्री ब्रह्मा बाबा से, जिन्होंने 1969 में अपना देह त्याग किया, और 1936 में जब इनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी, तब इन्होंने कई प्रकार के साक्षात्कार किए, जिनके आधार से यह विश्वविद्यालय शुरू हुआ, और परमात्मा ने इनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा ने इन्हें बहुत बड़ा कार्य दिया। क्या कार्य दिया, क्या जिम्मेदारी दी, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ब्रह्मा को तो हम याद करते ही हैं, ब्रह्मा को रचयिता मानते हैं, क्रिएटर है वो। तो क्या उसने क्रिएट किया और वो क्रिएशन कौन सी थी, किस प्रकार वो क्रिएट किया, वो आज हम देखेंगे। तो 1936 में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपने तन मन धन से जैसे एक बीज रोपा, और आज उसी बीज का परिणाम एक वट वृक्ष की तरह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में अपनी 9000 से भी अधिक शाखाओं द्वारा 137 से भी अधिक देशों में अपना कार्य कर रहा है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई, परंतु आरंभ एक बीज रोपा पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था, और लखीराज बाबू के नाम से वे एक बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे, ज्वेलर थे, जो हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे। उस समय अविभाजित भारत 1936 में, आप हैदराबाद सिंध में रहते थे, सब सब एक भारत ही था, और आपकी दुकान, आपकी बहुत बड़ी शोरूम कलकत्ता में थी। तो हैदराबाद सिंध और कलकत्ता आप ट्रैवल करते रहते थे। आपके जो ग्राहक थे वो साधारण लोग नहीं थे, क्योंकि हीरे जवाहरात तो धनी लोग ही लेंगे। तो उस समय के जो राजाएं महाराजाएं थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, स्टेट्स के, वे सब इनके ग्राहक थे। यहाँ तक कि नेपाल में भी बाबा जाते थे, राणा परिवार, राजा लोग वहाँ के, वो भी बाबा को निमंत्रण देते थे, क्योंकि रानियाँ तो ट्रैवल करती नहीं थी अपने जेवर चुनने के लिए, पसंद करने के लिए, तो बाबा उनके पास जाते थे। लेकिन वे राजाएं यही कहते थे कि भगवान ने एक बहुत बड़ी भूल की, बनाना तो आपको चाहिए था राजा, क्योंकि बहुत रॉयल पर्सनालिटी थी बाबा की, पर ये बड़ी भूल हो गई कि राजा हमें बनाया और आपको एक ज्वेलर बनाया, जौहरी बनाया। लेकिन इसमें भी क्या राज था, वो तो भगवान ने ही आकर के बताया। तो आप हैदराबाद सिंध में रहते थे, आपका बहुत ही अच्छा परिवार था, आपकी पत्नी और 5 बच्चे थे जो हैदराबाद में रहते थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे, उनके भी बच्चे थे, तो पोतरे दोतरे सब कुछ थे, बड़ा परिवार था। और उस परिवार में रहकर आपका व्यापार बहुत सुंदर चलता था। जितने ही बाबा धनी थे उतने ही बाबा बहुत बड़े दानी थे। कोई भी उनके द्वार पर आता था तो कभी भी हाथ खाली नहीं जाता था। यहाँ तक कि माता पिता गरीब थे, अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज भी बाबा से मांगते थे और बाबा सहर्ष उनको ये दान में देते थे। तो मानो इतना बड़ा दिल था उनका, इसीलिए बहुत सम्मान था समाज के अंदर। साधु महात्माएं बाबा के घर में आके रहते थे और सत्संग बाबा उनसे कराते थे, मित्र संबंधी सब बाबा के घर में आकर उनसे सत्संग सुनते थे। और कोई कमी नहीं थी जीवन में, बहुत बड़े भक्त थे, विष्णु की भक्ति करते थे, कट्टर वल्लभाचारी पक्के वैष्णव कुल के थे, बहुत उनके असूल थे, गीता का नित्य पाठ करते थे, बिना मुंह जूठा किए नहा धोकर पहले गीता का पाठ करते थे, फिर और कुछ काम, अपने परिवार को भी बिठा करके पहले गीता का पाठ करते थे और उनको भी कहते थे आपको भी ये सुनना है। ट्रेन में सफर करते भी उनका ये नियम पक्का था, मानो इतने अपने असूलों में पक्के थे। कोई मंदिर भारत का उन्होंने छोड़ा नहीं होगा जहाँ दर्शन करने न गए हो, बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ तक कि अमरनाथ की यात्रा भी बाबा ने की थी, तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति भावना भी बहुत थी, धन भी बहुत था, नाम मान शान यश सब कुछ था, लेकिन कमी थी सत्य को जानने की। ईश्वर कौन है, हम कौन है, हम क्यों इस संसार में हैं, आखिर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, आदि आदि ये प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते ही रहते थे। और बाबा अक्सर करके साधु महात्माओं से, गुरुओं से ये पूछते थे, उसके लिए कई शास्त्र पढ़ डाले बाबा ने यह जानने के लिए कि आखिर सत्य क्या है। लेकिन कहीं भी उनको ऐसा संतोषजनक जवाब जो वो चाहते थे, जिनसे उनकी ये इच्छा पूरी हो, वो नहीं मिलता था। और फिर कैसे, एक दिन की बात है, उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया। विष्णु की वे अटूट भक्ति करते थे, लेकिन एक दिन उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। विष्णु चतुर्भुज ने उनको बहुत सुंदर वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत् त्वम्, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो। ये तत्त्वम का वरदान एक नया वरदान, एक विचित्र वरदान था जरूर, क्योंकि जब भी कोई अपने इष्ट के ध्यान में बैठता है और मानो कोई इच्छा है तो इष्ट का दर्शन उन्हें हो जाता है और उस इष्ट से उनको यही वरदान मिलता है, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। अब बाबा को इस संसार की तो कोई इच्छा नहीं थी, सब कुछ पाया था, लेकिन एक ही इच्छा थी सत्य को जानने की। तो जब विष्णु का उन्हें साक्षात्कार हुआ और विष्णु के कई रूप उनके सामने आए, एक एक करके विष्णु के रूप उनके सामने आते गए, अलग अलग मंदिर है बहुत भारत के अंदर, और हर एक स्वरूप ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और लगातार ये साक्षात्कार बहुत देर तक करते करते बाबा उसमें मग्न हो गए, और जब होश में आए, आंख खोली, तो बाबा को ये समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं कैसे विष्णु हूं, इनके समान मैं कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, मैं तो इनका दास हूं, इनका सेवक हूं, क्योंकि यही हम भक्ति में मानते हैं। लेकिन ये वरदान मिला तो मेरे जैसे हो, इसका मतलब क्या है। अब ये प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए जो बाबा संतों के पास जाते थे तो ये प्रश्न रखा, इसका अर्थ क्या है, मैं इन जैसे कैसे हूं। तो उनके जो उस समय के गुरु थे, क्योंकि बाबा ने इसी सत्य की खोज में होने के कारण 12 गुरु किए, नहीं तो कोई एक ही गुरु करता है, वो समझता है बस एक ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन जब उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था तो वे सोचते थे इनसे कोई और पहुंचा हुआ गुरु हो जो मुझे ये ज्ञान दे, मेरी जो अंदर की जिज्ञासा है उनको संतुष्ट करे। तो जो उस समय के उनके गुरु थे उनसे ये प्रश्न किया कि ये मुझे जो साक्षात्कार हुआ और ये वरदान मिला अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो, इसका मतलब क्या है। तो गुरु ने अपने भाव में यही कहा कि हो सकता है कि भगवान को आपसे कुछ महान कार्य करवाना है जो ईश्वर ही कर सकता है, लेकिन आपके द्वारा उसको कराना है, शायद इसलिए ये वरदान आपको दिया। अब उसके मन में और प्रश्न उत्पन्न हुए कि भगवान को मेरे से कुछ कराना है तो क्या कराना है, वो भी तो पता हो। तब गुरु ने उनको एक राय दी कि इसके लिए आप एकांतवास में चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ एकांत में, ये संसार के वैभवों से परे या और बातों से, धंधे से, परिवार से परे कहीं जाओ और एकांतवास में रहो, और वहां आपको शायद भगवान से कुछ और प्रेरणा मिले। क्योंकि वो भक्ति कर रहा था और भक्ति के समय ये साक्षात्कार हुआ, लेकिन इनसे जब परे जाए तब ज्ञान प्राप्त हो। तो फिर आप बनारस गए और बनारस में अपने मित्र की कोठी के बाहर एक बगीचे में बाबा तपस्या करते थे और बनारस घाट पर भी जाते थे। तो कैसे एक दिन जब विष्णु का ही ध्यान कर रहे थे कि अचानक बाबा को कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा कि 3 तरीके से इस कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है, एक एटॉमिक वॉर से, दूसरा सिविल वॉर से, और तीसरा नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं से। 3 रूपों से इस संसार का विनाश हो रहा है। और फिर बाबा ने देखा कि सब कुछ जलमग्न हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अब बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। बाबा ने यही पुकारा, हे भगवान, क्या ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी, ये सब आपकी ही तो रचना है, और अगर ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी फिर इनको रचने का मतलब क्या था, अगर खत्म ही होनी है तो। हे भगवान, इसका राज हमें बताओ, और ये भी बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे आपका साथी बनूं, या आपको सहयोग दूं, या मेरे द्वारा आप क्या सेवा लेना चाहेंगे। क्योंकि गुरु ने उसको कहा था कि भगवान को आपके द्वारा कुछ कराना होगा, कुछ ऐसा ईश्वरीय कार्य, तो क्या आप मुझसे कराना चाहते वो भी आप बताएं। तो कैसे बाबा को उसके बाद परम धाम का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा एक अखंड ज्योति का महतत्व, बहुत सुंदर सुनहरा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश की दुनिया में छोटे 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 सितारे देखे, बहुत ही सुंदर रूप था। और फिर ये परमधाम जो आत्माओं का लोक है, जिसे हम परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, परलोक, निर्वाण आदि शब्दों को से याद करते हैं, ब्रह्म के रूप से याद करते हैं, उसी का साक्षात्कार हुआ। और फिर बाबा ने देखा कि उसी धाम में एक बहुत प्रकाशमय रूप ज्योति, बहुत तेजोमय ज्योति, और फिर देखा कि उस प्रकाश के स्थान से छोटे 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 सितारे धीरे 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 वहां से निकलते 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 वो नीचे उतरते 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 धरती पर पहुंचे। और जैसे धरती पर पहुंचे तो बाबा ने देखा ये सारी जो पृथ्वी थी, जो बिल्कुल जैसे संसार जलमग्न हो चुका था, वो धीरे धीरे बदलता गया बदलता गया। और वो जो एक एक छोटा सितारा था वो आत्माएं थी। वो आत्माएं धरती पर जैसे ही आई, एक एक देवी और देवता का रूप लेता गया। और देखते देखते बाबा ने देखा कि एक सुंदर दुनिया बन गई। कहां एकदम सब कुछ जलमग्न, सब खाक, सब नष्ट, और कहां एक सुंदर दुनिया जिसमें पांचों ही तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उनका एक सर्वोत्तम सुंदरतम स्वरूप जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और फिर बाबा ने उसमें देखा कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण, एक सुंदर सोने का महल जो हीरों से जुड़ा हुआ था, उस महल से बाहर आए और एक सुंदर बगीचे में विचरण करने लगे। और फिर एक आवाज उनको आई, एक आकाशवाणी जैसे वो आवाज उनको सुनाई दी, लखीराज उठो जागो, उठो जागो। तो बाबा को तो समझ में नहीं आई ये आवाज कहां से आ रही है। और फिर आया इस कलयुगी दुनिया के विनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आनी है, और आपको इसके लिए तैयार होना है। ऐसी सतयुगी दुनिया को लाने के लिए आपको तैयार होना है। बस ये आकाशवाणी बाबा को आई। अब जब बाबा ने आंखें खोली, कुछ समझ में तो आया नहीं कि ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी ऐसी ताकत है जो मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा। धन की शक्ति है पर उससे ऐसी दुनिया तो मैं नहीं बना सकता हूँ। कुछ दान कर सकता हूँ, कुछ सेवा कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे क्या करना होगा, भगवान ये भी तो बताएं। लेकिन इस साक्षात्कार के बाद बाबा क्या दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। एक इस कलयुगी दुनिया के लिए एकदम वैराग्य आ गया, और उनको लगा अब ये मैं धंधा जो कर रहा हूं, मेरे सामने जो हीरे जवाहरातों का धंधा है वो तो मैं कर नहीं सकूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए, जहां उनका बहुत बड़ा शोरूम था और उनके पार्टनर वहीं रहते थे। तो अपने पार्टनर को उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे अनुभव हुआ है, साक्षात्कार हुआ है। और जब वो अपने दुकान में गए तो देखा वो हीरे, इतने कीमती हीरे थे, वो पत्थर दिखाई देने लगे। सारी दृष्टि भी बदल गई बाबा की। और अपने पार्टनर को कहा भी मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, मुझे भगवान ने कुछ और कार्य, सच्चे हीरों का व्यापार करने का कार्य दिया है, इसलिए मैं अपनी बिजनेस वाइंड अप करना चाहता हूँ, और कुछ भगवान ने जो कार्य दिया है वो मुझे अभी करना है। तो बहुत ही मुश्किल से पार्टनर ने माना और अपना जो इनका हिस्सा था वो उनसे लिया, और वापस बाबा हैदराबाद आ गए कलकत्ता से अपने परिवार में। और जैसे ही बाबा वापस पहुंचे, एक तरफ विनाश का उन्होंने साक्षात्कार किया, कलयुगी दुनिया के विनाश का, दूसरी ओर एक सुंदर तम सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया, स्वर्गीय दुनिया का। तो क्या उनको करना है अब वो सोच में पड़ गए। ये दुनिया बदलने वाली है ये उनको निश्चय हो गया। और तो अपने आप को बाबा ने क्या करना है इस खोज में, बाबा जब वापस गए तो बिल्कुल सिंपल, जैसे क्या उनका ठाट था, राजाओं महाराजाओं से उठते बैठते थे, अंग्रेजों से उठते बैठते थे, अंग्रेज भी उनके दुकान पर हीरे खरीदने जाते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल था, 1936 की ये बात है। और उस समय बाबा की आयु 60 वर्ष की थी 36 में। तो जब वापस बाबा आए तो उनके परिवार वाले हैरान हो गए कि ये बाबा को क्या हो गया है, इतना बदल गया। तो बाबा एकांत में रहने लगे अपने कमरे में और अपने ही मग्न स्थिति में कि अब भगवान मुझे ये बताएं कि मुझे करना है क्या, मैं तैयार हूँ, आप जो मुझे कार्य देंगे मैं वो करने लिए तैयार हूँ। तो एक दिन की बात है, अपने परिवार में घर में थे अपने ही कमरे में, तो बाबा एकांत में आंखें बंद करके बैठे थे। उनको ये तो और कुछ तो पता नहीं था क्योंकि विष्णु का ही ध्यान करते थे और उसके ध्यान से ये सब साक्षात्कार उनको हुए। तो कैसे एक दिन उनको एक बहुत भव्य सुंदर ज्योति का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा एक दिव्य प्रकाशमय स्वरूप उनके नजदीक आया, बहुत निकट आया। बहुत ही सुंदर स्वरूप था, इतना ही शीतल था उतना ही प्रकाशवान था, पर शीतल प्रकाशवान। और वो उनके सामने आते 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 उनके निकट आता गया और उनके अंदर प्रवेश हो गया। ये बाबा ने देखा और एकदम आंखें तो बंद थी और बाबा का ललाट चमकने लगा। उनके परिवार देख करके हैरान हो गए कि ये बाबा को क्या हो रहा है, क्योंकि उनको तो समझ में कुछ आया नहीं। और जैसे बाबा ने आंखें खोली तो आंखें भी एकदम जैसे बल्ब चमक रहे थे आंखों में, और एकदम तेजोमय उनका ललाट और चेहरा और चारों ओर। तो परिवार वालों ने पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया, क्योंकि विचित्र अनुभव हुआ होगा। तो बाबा ने कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, वो तेजोमय थी, बहुत बड़ी प्यारी थी और वो मेरे पास आकर मेरे में समा गए। अब क्या मुझे करना है मुझे पता नहीं, परंतु वो शक्ति का मुझे अनुभव हुआ। पर उसके बाद चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार हुआ, क्योंकि उस शक्ति ने जो प्रवेश किया, उस शक्ति ने यानी शिव परमात्मा का उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ और शिव परमात्मा ने उनके अंदर प्रवेश करके अपना परिचय उनके मुख से दिया कि निजानंद रूप स्वरूपम शिवोहम शिवो, मैं निजानंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। ये शब्द उनके मुख से निकलते गए और आंखें बंद थी। और फिर जब आंखें खोली, परिवार वालों ने सब देखा, ये सब क्या अनुभव है। तो जब बाबा ने कहा वो शक्ति मुझ में प्रवेश हुई, उसके बाद जो चमत्कार हुए, क्या चमत्कार हुए कि जो भी बाबा को देखते थे उनको बाबा नहीं दिखाई देता था, बाबा का जो धोती कुर्ता वाला साधारण चेहरा स्वरूप वो गुम हो जाता था और उसकी जगह श्री कृष्ण खड़े हैं, ऐसे उनको दिखाई देने लगा लोगों को, परिवार वालों को भी। अब ये किसी को समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, लोगों को घर बैठे भी ये साक्षात्कार होने लगे, श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे और श्री कृष्ण के जैसे पास जा रहे हैं, वो श्री कृष्ण दूर चला जाता है और पिताश्री जी उनके आगे आ जाता है और कृष्ण दूर से कहता है पीछे से इशारे से कि मेरे से मिलना है तो मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, पहले इनके पास जाओ तब मैं मिलूंगा। और दूर दूर से लोग आते थे क्योंकि घर बैठे भी उनको दर्शन होने लगे, इनको ढूंढने के लिए कि ये कौन है जिनके लिए कृष्ण श्री कृष्ण हमें कहता है इनके पास जाओ। और जैसे ही बाबा के सामने आते थे उनको श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता था। अब ये इतनी बड़ी न्यूज बन गई, 1936 की ये बात है, तो अमेरिका में टाइम मैगजीन निकलती है और इंटरनेशनल न्यूज उसमें आती है, उस मैगजीन में भी ये लेख छपा कि हैदराबाद सिंध भारत में एक दादा लेखराज है जिनके पास कोई ऐसी शक्ति है जो उनको देखता है उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। और बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई जादू नहीं है, ये कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ और चमत्कार क्या हुए, जिन जिनको ये साक्षात्कार हुए वो आने लगे, उसमें भी एक क्रांति ये फैली कि कन्याएं माताएं वो ज्यादा आने लगे। तो एक और साक्षात्कारों की धूम थी, एक ये क्रांतिकारी बात थी, और दूसरी ओर कन्याएं माताएं आने लगी ज्यादा, उनको ज्यादा साक्षात्कार होते थे। और उस समय जो स्त्री शक्ति थी उनका तो मानो तिरस्कार था या उनका शोषण था, नारी को कोई भी समाज में स्थान नहीं था, पुरुष प्रधान समाज में नारी का कोई स्थान नहीं था। और अगर किसी स्त्री का पति गुजर जाए तो उस विधवा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता था दुखों का, क्योंकि कोई उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देता था। कोई अगर वो किसी दुकान के आगे चली जाए तो पुरुष लोग पानी की बाल्टी उठा करके फेंकते थे, ये कहीं मेरे ऊपर अपशगुन तो नहीं आया, मानो इतना उनके प्रति तिरस्कार। अब परमात्मा ने अपना कार्य किया, नारी शक्ति को आगे बढ़ाया। और कैसे आप जगत अम्बा सरस्वती जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की माँ है, अलौकिक माँ के रूप में है, और इनको इनकी इनके पिता ने शरीर छोड़ा था, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उस समय सिंधी लोग हैदराबाद सिंध में रहते थे, उनकी बिजनेस सारे वर्ल्ड में थी। सिंध में तो मुश्किल से आते थे और बिजनेस उनकी हर देश में खंड में रहती थी। तो इनके पिता भी श्रीलंका में बिजनेस करते थे और आते रहते थे, लेकिन अचानक उनका जैसे उन्होंने देवाला मारा, बैंकरप्ट हो गए। तो बैंकरप्सी के कारण एकदम उनको हार्ट अटैक हुआ और उससे उनकी डेथ हो गई। तो इनकी जो माँ थी बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, इतनी दुखी होती थी कि काले कपड़े पहन के रोते रहना रोते रहना। अब ये जो बहन थी मम्मा इस यज्ञ की अलौकिक माँ, उस समय ये 15 साल की थी और ये अपने स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अवार्ड लिए थे, डांसिंग की कला थी, सारी कलाएं थी इसमें, संगीत नृत्य गायन वादन सब कुछ था। तो ये बहुत अवार्ड लेती थी आर्ट एंड कल्चर में। और फिर इनकी माँ की ये स्थिति देख करके उनसे रहा नहीं गया, बड़ा उसको हुआ कि मैं मेरी माँ कैसे ये बदले। तो किसी ने उसको कहा कि आप इनको बाबा के पास ले जाओ, इतना रो रही है, आप वहां जाओ तो इनको शांति मिलेगी। तो ये जैसे अपनी माँ को ले गई बाबा के पास, तो बाबा को देखते ही श्री कृष्ण का रूप देखा, जैसे सुंदर मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ जैसे उनके आगे खड़ा है। उसको तो रोती रोती आई और हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, उनको जैसे अपना भगवान मिल गया। बस ये भी एक न्यूज बन गई। इनका नाम राधे था इनकी बेटी का। और कैसे बाबा इनके पिता को जानते थे, क्योंकि बिजनेसमैन तो एक दो को जानते थे, और ये भी जानते थे कि ये बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी इसकी आवाज है। तो उस समय बाबा ओम की ध्वनि करते थे, सभा आती थी बाबा ओम की ध्वनि करते थे और सारी सभा जैसे ओम की ध्वनि करती थी। तो जैसे परमात्मा को इनको परमात्मा का आदेश मिला कि बहनों को आगे करो, तो इनसे पूछा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि करो। बाबा तो 60 वर्ष के थे और इनके साथ कोई लौकिक संबंध नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये अलग परिवार के थे और ये तो 15-16 साल की थी। तो इसने जैसे ओम की ध्वनि की तो इनसे श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा, श्री राधे का साक्षात्कार होने लगा, मानो लक्ष्मी और नारायण जैसे सामने खड़े हैं ये लोग अनुभव करने लगे। तो इनके प्रति भी बहुत भावना बैठ गई। और फिर कैसे ये और अपनी माँ, इनकी माँ पूर्ण रूप से, क्योंकि और तो उनका कोई नहीं था, बिल्कुल दिवाला निकला था, एक पाई भी घर में नहीं थी, वो सब भी मानो सब कुछ खत्म हो गया था। तो इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और फिर कैसे अन्य बहनें आई, दादी प्रकाशमणि जिनको आप देख रहे हैं, 1969 से जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने ये देह त्यागा, उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, जो 2007 में 38 साल एडमिनिस्ट्रेशन किया और उसके बाद 2007 में उन्होंने देह त्याग किया। तो उस समय आप 14 साल की थी, 1922 में इनका जन्म हुआ और 14 साल की उम्र में 36 में आप आई। आपको घर बैठे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और बाबा का, ब्रह्मा बाबा का हुआ, और कृष्ण ने इनको कहा मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। अब ये बाबा को जानती नहीं थी, ये तो स्कूल पढ़ती थी, लेकिन इनके पिता जरूर जानते थे। इनके पिताजी ज्योतिषी थे, ब्राह्मण थे, ज्योतिष विद्या जानते थे, और हैदराबाद के लोग इनके पास जन्म पत्री ले जाते थे इनके पिता के पास। तो जब बेटी की जन्म पत्री बनाई थी हॉरोस्कोप, तो उनको ये महसूस हुआ कि ये मेरी बेटी ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, ये तो मीरा बाई की तरह रहेगी, क्योंकि भगवान से बहुत प्यार है इनका। तो कृष्ण से बहुत प्यार था, गीता इनको भी कंठस्थ थी, रोज गीता का पाठ करती थी और स्कूल भी जाती थी। तो जब सवेरे उनको साक्षात्कार हुआ, तो बाद में उनकी फ्रेंड ने कहा, जो स्कूल की इनकी सहेली थी, उसने कहा, क्योंकि तब तक तो न्यूज फैल गई थी कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जो जाता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब ये कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, तो इनकी फ्रेंड ने कहा तुम तो कृष्ण की भक्ति करती हो, तो चलो हम वहां चलेंगे और वहां कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं, क्योंकि पिता की आज्ञा के बिना तो कहीं नहीं जा सकती ये लड़कियां बेटियां। तो पिता के पास जैसे आई, तो पिता ने ही सबसे पहले इनसे कहा, इसने पूछे उसके पहले ही, बेटी मैंने सुना है यहाँ पर एक दादा लेखराज है, मैं उसको जानता तो हूँ, लेकिन सुना है कि उनको जो देखता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो तुम वहां जाओ देखो क्या होता है। जैसे पिता अपने बेटी को भेजता, तुम कृष्ण की भक्ति तो करती हो, जाके देखो। और अगले दिन ये जैसे ही बाबा के पास आई और बाबा को देखा, तुरंत उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और बाबा इनको जानते थे, इनके पिता को जानते थे, और ये भी जानते थे ये कृष्ण की भक्ति करती है बहुत, और इनके लिए पिता ने कहा है कि ये तो मीरा जैसी बनेगी। अब उस समय बाबा ने एक और कार्य शुरू किया था, बाबा ने एक स्कूल खोला था, क्योंकि बाबा चाहते थे कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको कुछ न गीता का ज्ञान मिलता है, न उनको कोई आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, बस बाकी बातें तो मिलती है पर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलती है, मॉरल वैल्यूज का ज्ञान नहीं मिलता है। तो ऐसे टीचर्स को बाबा ढूंढ रहे थे जो उनके स्कूल में कुछ ऐसी मॉरल विद्या भी वो सिखा सके। तो बाबा ने इनको कहा, इनका नाम रमा था, तो इनको कहा कि देखो रमा, मैं ये जो स्कूल है मेरा, उस स्कूल में तुम टीचर बन के पढ़ाओगी, तो पर उसके लिए अपने जीवन को श्री कृष्ण को अर्पित करना होगा, और तुम्हारा जीवन तो श्री कृष्ण को अर्पित ही है, तो अपने पिता से छुट्टी लेकर आओ कि मैं अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करती हूँ। तो पिताजी ने सहज सहर्ष उसको स्वीकृति दे दी और उसके बाद वहां गई और वो भी समर्पित हो गए। अब मानो इसी प्रकार मम्मा और बाबा अलौकिक माता पिता के रूप में एक ईश्वरीय परिवार को की पालना की, और उस समय लगभग 350 भाई बहने थे, भाई तो बहुत कम थे, बहने ज्यादा थी, जैसे कुमारियां माताएं अधिक थी। तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई और परमात्मा ने यह आदेश दिया कि अब माताओं बहनों को आगे करो। जब नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति होगी, तब ये संसार स्वर्ग बनेगा। नारी के उत्थान से विश्व का उत्थान है और नारी के पतन से विश्व का पतन है। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है, और ये परमात्मा ने उनको आदेश दिया। तो बाबा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, चल अचल प्रॉपर्टी तो बहुत थी बाबा की, वो सारी माताओं के आगे समर्पित कर दी, और माताओं को जैसे अर्पित करके बाबा एकदम न्यारे बन गए। और मम्मा, जिनको अलौकिक माँ हम कहते हैं, जिनका नाम राधे था, फिर ओम राधे पड़ा, उनको जगदम्बा सरस्वती ये परमात्मा ने नाम दिया, और पिता श्री ब्रह्मा बाबा को नाम दिया। और उस समय करीब ये तरुण बहनें करीब 385 भाई बहने थे, तो उनको फिर बाबा कराची में स्थानांतरित होकर गए, और वहाँ कराची क्योंकि बड़ा शहर था, हैदराबाद सिंध तो छोटा शहर था, तो बाबा कराची चले गए। और कराची में ये बहनें बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर रहने लगी, एकदम न्यारी होकर रहने लगी। कराची का क्लिफ्टन बीच है, बहुत समुद्र का किनारा, क्योंकि कराची सागर के किनारे पर जैसे मुंबई, तो इसी प्रकार वो वेस्टर्न बॉर्डर है, और बहुत ही सुंदर शहर था उस समय भी, अभी तो बदल गया, लेकिन वहां पर बिल्कुल दुनिया से दूर आइसोलेशन में न्यारी स्थिति में रहे, और 14 साल रहे, 1937 से लेकर 1950 तक 14 साल। और इन 14 सालों में दुनिया का नक्शा बदल गया। आप जानते हैं, इतिहास जानते हैं कि 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे इतनी तबाही हुई, कितने लाखों लोग मारे गए, और वो वॉर तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया। मानो वो न्यूक्लियर वॉर, एटॉमिक वॉर का एक छोटा सा कदम था। तो कईयों ने बाबा से पूछा, बाबा क्या यही एटॉमिक वॉर, जो एटॉम बॉम्ब गिराया, क्या यही है जो आपने साक्षात्कार में देखा, न्यूक्लियर वॉर, एटॉमिक वॉर? तो परमात्मा ने कहा, शिव परमात्मा ने कहा कि नहीं, ये तो केवल एक रिहर्सल थी। फिर उसके बाद आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और उस हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में खून की नदियां बही, बहुत जैसा सिविल वॉर हो गया उसी समय, और उस सिविल वॉर में भी कितने हजारों लोग मारे गए। तो बाबा से पूछा, क्या यही विनाश है जो आपने सिविल वॉर देखी? तो परमात्मा ने कहा, नहीं, ये तो रिहर्सल थी, सिविल वॉर का तो बहुत बड़ा रूप आना है। फिर उसके बाद उसी समय बहुत सारे सुनामी हुए, कई भूकंप हुए, तो बाबा ने यही कहा, ये सब रिहर्सल है। परंतु दुनिया का नक्शा बदल गया, यूरोप में कैसे कम्युनिज्म पनपा, और आप जानते हैं कैसे सारा मैप ही बदल गया। तो हम देखते हैं कि उस समय ये संस्था कराची में थी, और ये 14 साल उन्होंने तपस्या की, और 14 साल तपस्या करने के बाद जब 1947 में बंटवारा हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, इंडिपेंडेंस हुआ, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये संस्था वहीं थी और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन परमात्मा ने यही आदेश दिया उनको कि अभी भी और भी तपस्या करो, और सचमुच उनकी तपस्या के बल से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो इनका बाल भी बांका हो, क्योंकि बहुत उस समय आतंक फैल गया था। कई पूछते थे ये हिंदू है या किस धर्म के हैं, तो परमात्मा ने उनको कहा, आप कहो कि हम मानवता के कल्याण के लिए है, खुदाई खिदमतगार है, खुदा की सेवा में है, वो कोई जाति या धर्म की बात नहीं है, ये तो मानवता ही हमारा मूल धर्म है। तो बस उसके बाद 3 साल वे कराची में ही रहे, और 1950 में जब भारत रिपब्लिक बना 26 जनवरी को, और सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब तैयारी हो गई, सब कुछ शांति हो गई, तब परमात्मा का इनको आदेश मिला, जो 385 भाई बहने थे जिन्होंने इतनी तपस्या करके इतनी शक्ति अपने अंदर भरी थी, उनको आदेश मिला कि अभी भारत में जाओ। भारत ही विश्व का गुरु है, भारत ही विश्व का लाइट हाउस है, भारत से ही विश्व को शांति का संदेश मिलेगा और भारत ही विश्व गुरु बन करके सारे विश्व में परिवर्तन लाएगा। ये जैसे उनको संकेत मिला, जैसे लाइट हाउस चारों ओर लाइट देता है, ये भारत ये कार्य करेगा और भारत में फिर से दूध घी की नदियां बहेगी और वही यही भारत जो पहले स्वर्ग भूमि था, सोने की चिड़िया कहलाता था, वो फिर से बनेगा। ये परमात्मा का उनको आदेश मिला कि वापस कि भारत जाओ। कहाँ जाओ ये भी आदेश मिला उनको कि पहाड़ पर जाओ, कराची सागर के किनारे और पहाड़ पर जाओ। तो सबसे नजदीक पहाड़ कराची से वो है माउंट आबू। वेस्टर्न बॉर्डर है भारत का और कराची भी जो हिस्सा है बहुत दूर नहीं है कराची, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर है ये। आप माउंट आबू जाएंगे कल, तो जब आप चढ़ेंगे ऊंचा जाएंगे तो वहाँ गुरु शिखर है जो हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट आबू है। वहाँ से आप लेफ्ट तरफ देखेंगे तो पहाड़ है बहुत और उन्हीं पहाड़ों के पीछे कराची है। तो इसीलिए ये सबसे नजदीक पहाड़ था तो यही पहाड़ चुना। और कैसे, ये भी एक विचित्र बात थी, परमात्मा की इतनी मदद थी कि जो वहाँ से हिंदू लोग निकले बाहर आए हिंदुस्तान में आए, वे तो हाथ खाली आए, बिल्कुल हाथ खाली। वो कुछ भी लेके नहीं जा सके, अपना सारी प्रॉपर्टी सब कुछ धन संपत्ति छोड़ करके भागे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन परमात्मा ने इनकी रक्षा भी की और साथ साथ जो उस समय का सिंध का चीफ मिनिस्टर था, वो बाबा का बहुत बड़ा मित्र था, मुसलमान था लेकिन बहुत बड़ा मित्र था बाबा का, उसने बहुत मदद की और इनको कहा कि आप सारा सामान ले जाओ, जो भी आप चाहते हो सब लेके जा सकते हो, और एक जहाज भी साथ में दिया कि इस जहाज में आप ये सामान अपना ले जाएं और आप भारत में जाना चाहें तो जा सकते। वैसे तो उसने कहा आप यहीं रहें, यहाँ तक उनको कहा कि आप यहाँ अगर रहेंगे तो हो सकता आप लोग इतने पाक लोग हो, इतने पवित्र लोग हो, शायद हमारा देश पाक बन जाए आपके रहने से। यहाँ हम आपको पूरा सहयोग देंगे, लेकिन परमात्मा का आदेश था कि भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनना है, इसलिए भारत में आना हुआ। और ये जहाज का एक दृश्य है, ये सब बहने और सारा ईश्वरीय परिवार और बैठा है। और फिर ओखा हार्बर है सौराष्ट्र में, वहाँ बहुत नजदीक है कराची के, तो वहाँ पर उतरे और वहाँ से बाय ट्रेन 14 साल के बाद दुनिया देखी उन्होंने, बहनों ने। तो आप सोच सकते ये 1950 की ट्रेनें हैं भारत की, कैसी थी, बिल्कुल खुला, देखिए बाहर सिर झांक करके बाहर निकाल के देख सकते हैं। और आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे और कैसे माउंट आबू आना हुआ। और ये माउंट आबू आप कल जाएंगे देखेंगे, ये बिल्कुल ऋषि मुनियों की भूमि है, कई गुफाएं हैं, अनेक प्रकार की मानो बहुत मंदिर हैं, तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थल बाद में, पहला ये तीर्थ स्थान है। और साथ साथ राजाओं और महाराजाओं के लिए ये माउंट आबू समर कैपिटल था, जो राजस्थान के सौराष्ट्र के जो सब ये एरिया है वेस्टर्न साइड, इनके लिए एक ही हिल स्टेशन है, तो समर कैपिटल था। तो राजाएं महाराजाओं ने माउंट आबू में महल बना के रखे, एक एक डिस्ट्रिक्ट के महल है। तो जब भारत गणतंत्र बना और सारी राजाई खत्म हो गई तो इनके आगे भी सीलिंग आई, लैंड सीलिंग, क्योंकि इनको भी सब कुछ या तो चेंज करना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, राजाओं महाराजाओं ने जो माउंट आबू में महल है उन सबको या तो वो स्कूल बन गए हैं, वह बोर्डिंग स्कूल्स हैं, या तो वो होटल्स हैं। तो माउंट आबू पर्यटन स्थल है तो होटल्स बन गए हैं या तो स्कूल है। तो इसीलिए ये चारों ओर महल है, आप माउंट आबू में जाएंगे और बहुत सुंदर स्कूल्स हैं, क्योंकि और विदेश के बच्चे भी माउंट आबू में पढ़ते हैं, बहुत हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं और यही माउंट आबू है, यही उनकी इंडस्ट्री है और पर्यटन है, टूरिज्म, कोई भी अन्य प्रकार का उद्योग नहीं है। तो 4000 फीट की ऊंचाई पर माउंट आबू है और जो हाईएस्ट पीक ये अरावली रेंज है पहाड़ों का, वो हाईएस्ट पीक 6000 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ पर गुरु शिखर है, वहाँ सबसे बड़ा शिव का मंदिर है, वहाँ वहाँ तक भी लोग जाते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ आना हुआ, और बाबा ने एक मकान लिया जो भरतपुर राजा का महल था, तो उसमें आकर के सभी रहे और तपस्या की। और फिर जब भारत में जो भाई बहने आए थे, इन सबके रिश्तेदार, उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आकर के जो 14 साल तपस्या की है, आप हमें आकर के ये ज्ञान दें और हमारी भी आंख खोलें, आपने इतनी तपस्या करके इतनी आत्मिक कमाई की है तो हमें भी आप बताएं। तो बाबा ने उनको कहा कि ठीक है आप जाइए। तो कैसे बाबा और मम्मा ने तो तपस्या की माउंट आबू में, लेकिन बाबा के साथ साथ अन्य भाई बहने भी थे, वो भी तपस्या करते रहे। और फिर जब निमंत्रण मिला तो कैसे निमंत्रण स्वीकार करके बाबा ने बहनों को बाहर भेजा, और उस निमंत्रण के आधार पर ये बहनें अपने परिवारों में गई, जहां से वो कराची में आई थी बाबा के पास। और विचित्र बात थी, तो आप देखेंगे ये हमारी एक दादी है, हम इनको दादी कहते, दादी माना बड़ी बहन। तो उस समय जब आई, मनोहर इंदिरा दादी है, आप आई तो आप भी 12 साल की थी। इनके परिवार जब भारत में आए तो दिल्ली में उन्होंने अपना स्थान बनाया। तो जब उनको पता चला कि ये संस्था आ गई है तो इनको निमंत्रण दिया, ये एक मिसाल है, बाकी तो कई औरों का है जिन्होंने सेवा केंद्र खोले, लेकिन एक मिसाल मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे बाबा ने इनको दिल्ली भेजा, अपने परिवार में गई, तो वहां जाकर के ये भी ओम की ध्वनि बहुत सुंदर करती थी, ओम, अभी आपको इसके बाद थोड़ा बताएंगे कैसे करते हैं। तो ये जैसे वो करती थी, इनके घर में जो होते थे उन सबको इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगा। फिर मंदिरों से निमंत्रण मिला, देवियों के मंदिरों में, कि आप हमारे पास आकर के ये ओम ध्वनि करें, ज्ञान दें। और वहां जाती थी तो वहां भी भक्तों को इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगा। मंदिर भी छोटे पड़ गए, तो आप जमुना के किनारे, दिल्ली में जमुना किनारे जाकर बैठती थी और सभा लग जाती थी और आप प्रवचन देते थे जमुना के किनारे पर। एक मास तक दिल्ली में रही और फिर कहा मैं वापस माउंट आबू जाऊंगी। तो लोगों ने कहा माउंट आबू कैसे हमें छोड़कर जाओगी, आप जाएंगी तो हमारा क्या होगा, आप हमसे, हम रोज चाहते हैं कि हम ये दर्शन करें आपसे के, और आपसे हम ज्ञान सुने, आपका प्रवचन सुने, सत्संग सुने। तो इन्होंने कहा कि पिताश्री जी से हम पूछेंगे। तो बाबा ने इनको कहा कि अगर ये चाहते हैं कि आप इनको रोज सत्संग कराएं तो इनको कहो कि एक मकान लेकर के दो, हम उस मकान में रहेंगे और फिर आप उस मकान में आइए, वो सेवा केंद्र का रूप हो जाएगा और फिर हम वहां रह करके सेवा करेंगे। तो जो भाई बहने जिन्हों को लाभ मिला, उन्होंने कहा मकान लेना क्या बड़ी बात है, हम दिला देंगे आपको। तो हमारा पहला सेवा केंद्र माउंट आबू से बाहर दिल्ली में खुला और दिल्ली में ये सेवाएं हमारी शुरू हुई। बस फिर तो हमारी जो और बहनें थी जिन्होंने 14 साल तपस्या की, उनको बाबा ने और जगह भेजा जहां से उनको निमंत्रण मिले, और वहां पर सेवा केंद्र उन्होंने शुरू किए। फिर तो वे भाई बहने माउंट आबू आते थे तो दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ रहती थी, उनको हम कहते थे मुन्नी मम्मा, 3/4 मदर। तो मम्मा के साथ इनका अधिकतर उठना बैठना होता था। मम्मा फिर कई जगह पर उनको निमंत्रण मिला क्योंकि सेवा केंद्र चारों ओर खुल गए, तो मम्मा लखनऊ में गई, फिर कानपुर में गई, और सब जगह मम्मा से भी लोगों को बहुत साक्षात्कार होते थे, सरस्वती का साक्षात्कार, लक्ष्मी का साक्षात्कार, मानो इनसे इतनी सेवा बढ़ती गई और सेवा केंद्र खुलते गए। और मम्मा और दादी प्रकाशमणि उनके साथ कैसे तपस्या भी बहुत करते थे, और इसी तपस्या के बलबूते पर हमारी मम्मा की जैसे विदेह अवस्था होती गई, अशरीरी होती गई, बहुत न्यारी होती गई, बिल्कुल जैसे सबसे न्यारी होते होते 46 वर्ष की उम्र में 1965 में मम्मा ने अपना देह त्याग किया। बहुत यंग एज में उन्होंने अपना देह त्याग किया 65 में। और उसके बाद क्योंकि मम्मा हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, सब कुछ वो ही एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, बाबा ने उनको ही आगे रखा था। फिर उसके बाद दीदी मनमोहिनी हमारी दूसरी मुख्य दीदी थी, ये भी हैदराबाद सिंध की ही थी। इनकी विशेषता अपनी है, दीदी मनमोहिनी की उम्र उस समय जब आई थी 1936 में, तब आपकी उम्र 20 साल की थी। आप बहुत धनी परिवार की थे, इनके अंकल आंटी चाचा चाची वो जो जब वो भारत में आए इनके सारे परिवार वाले, तो मुंबई में ये जसलोक हॉस्पिटल, ये जो सिंध से सिंधी लोग आए थे उन्होंने मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल बनाया, केस किशनचंद चेलाराम कॉलेज, केसी कॉलेज, जहिन कॉलेज, ये सारे जो कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स ये सिंधियों ने सिंध से आकर के भारत में खोला। तो क्योंकि बहुत धनी थे, सारे विश्व में इनका बिजनेस था, तो ये उसी परिवार की थी। और ये जैसे ही बाबा के पास आई तो इनको भी बाबा से बहुत साक्षात्कार हुए और ये भी समर्पित हो गई। और आप भी मम्मा के संग रहती थी और एडमिनिस्ट्रेशन की इनमें बहुत बड़ी कला थी। फिर दीदी संभालने लगी और माउंट आबू में, और बाबा बाहर निकलने लगे, कई जगह पर गए। ये बाबा दिल्ली में है और माउंट आबू में सारे परिवार के परिवार आने लगे। ये सब अलग अलग फोटोज हैं, बच्चे परिवार, बाबा ने कैसे सबकी पालना की, पर एक ही लक्ष्य दिया कि एक परमात्मा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा को न हम परमात्मा कहते हैं न हमारे गुरु है, वो हमारे अलौकिक पिता हैं, जिनके माध्यम से परमात्मा शिव ने अपना परिचय दिया कि मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। लेकिन ये हमारे अलौकिक पिता है जिनके द्वारा ये सारा परिवार, ईश्वरीय परिवार हम अनुभव करते हैं। बाबा बच्चों को पत्र भी लिखते थे, जो पत्र आते थे बच्चों के बाबा उनको जवाब लिखते थे। और ये बाबा के अक्षर है वो, क्योंकि सिंध में रहते थे तो ये सिंधी भाषा है, तो अब इस यहाँ तो सब नहीं समझ सकते, तो फिर बहन उनका हिंदी करती थी, तो बड़े बड़े अक्षरों में बाबा ये पत्र लिखते थे। और पांडव भवन, आप माउंट आबू जाएंगे वहाँ बाबा की झोपड़ी है, उस झोपड़ी में बाबा पत्र लिखते थे। लेकिन जब बाबा के समय पर वो, क्योंकि माउंट आबू खजूर के पेड़ों से बड़ा मशहूर है, जहाँ भी आप देखेंगे खजूर के पेड़ बहुत है, लंबे लंबे पेड़ है, तो उनके पत्ते, ताजे ताजे पत्ते बाबा मंगवाते थे और बाबा झोपड़ी बनवाते थे। पांडव भवन जो अपना मेन हेडक्वार्टर्स है, और गर्मी के दिनों में बाबा दिन के समय, जैसे उनका ये सिटिंग रूम था, और पत्र लिखते थे और बच्चों से मिलते थे। तो चारों ओर बगीचा है, आप माउंट आबू जाएंगे तो अवश्य ये देखेंगे, जिसको हम कहते हैं बाबा की झोपड़ी। और ये हिस्ट्री हॉल है जहाँ पांडव भवन माउंट आबू जो हमारा ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स है, ये पोखरान हाउस कहलाता था। भरतपुर राजा का महल तो छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको होटल बनाना था, वो तो किराए पर लिया था। फिर उसके बाद पोखरान हाउस जो इस समय पांडव भवन है, जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स, पोखरान जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जहाँ पर न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके राजा का ये ठाकुर था, उनका ये उनकी कोठी थी, तो वहाँ पर वो खरीद लिया। आसपास बहुत जमीन भी थी, तो वो हमारा वर्तमान का ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स है जहाँ बाबा रहते थे। ये हिस्ट्री हॉल है, इस हिस्ट्री हॉल में बाबा आकर के वाणी चलाते थे, जो आज भी हम सेवा केंद्रों पर ज्ञान मुरली के नाम से वो वाणी सुनते हैं, जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के माध्यम से महावाक्य उच्चारण किए। तो इस स्थान पर, इस गद्दी पर बैठ करके बाबा वाणी चलाते थे और मम्मा दूसरी गद्दी पर बैठते थे। तो इस हिस्ट्री हॉल की ये विशेषता है, आप जाएंगे तो ये जो चित्र आपको दिखा रहे हैं वो चारों ओर इस विश्वविद्यालय का इतिहास वो चित्रों के द्वारा वहां पर लगा हुआ है, वो आप देखेंगे। तो शिव परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक ही हमें पाठ पढ़ाया कि परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, उसी को ही हमें याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। तो बाबा का ये छोटा सा कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, और बाबा यहाँ रह करके बच्चों से मिलते थे, और ये उनका साधारण सा पलंग है जहाँ बाबा सोते थे। आज भी आप माउंट आबू में पांडव भवन जाएंगे तो बाबा के कमरे में जाएंगे जहाँ बाबा रहते थे, वही पलंग है जहाँ बाबा सोते थे, वो भी आप देखेंगे। और यहाँ पर ही अनेकों ने बहुत अनुभव किए बाबा से, और 18 जनवरी 1969 को पिताश्री ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए एट द एज ऑफ 93 ईयर्स। अपने ही पलंग पर ही बाबा बैठे थे, और कैसे बैठे बैठे एक सेकेंड में आत्मा उड़ गई। और हमारी दादी प्रकाशमणि जी बाबा के सामने थी, और दादी जी ने बाबा का जैसे हाथ पकड़ा, बाबा ने उनको दृष्टि दी, और वो दृष्टि और हाथ इनसे जैसे सारी पावर्स विल कर दी दादी प्रकाशमणि जी को, और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए एट द एज ऑफ 93। और हम कहते अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त वतनवासी हुए। और ब्रह्मा बाबा की स्मृति में पांडव भवन में 18 जनवरी को जब उन्होंने देह त्याग किया, तो 21 जनवरी को बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया वहीं पर आश्रम के अंदर ही, और उसी स्थान को नाम दिया है शांति स्तंभ। ये बाबा की समाधि है पांडव भवन में, और इस स्थान पर सभी जाते हैं, खास 18 जनवरी के दिन हजारों भाई बहने आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि ब्रह्मा बाबा को अर्पित करते हैं 18 जनवरी के दिन। और कैसे अनुभव करते हैं कि ये चार धाम, जैसे चार धाम की यात्रा की जाती है, वैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा के ये चार धाम हैं, जिसमें बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी और शांति स्तंभ, जहां हम अनुभव करते हैं परमात्मा के साथ आत्मा के सर्व संबंध। वो तो बहुत सुंदर अनुभूति है, आप पांडव भवन जाएंगे खुद ही देखेंगे। और फिर दीदी जी तो माउंट आबू में रहती थी, दादी प्रकाशमणि मुंबई में रहती थी, और बाबा और उस थोड़े दिन पहले वो बॉम्बे से माउंट आबू आई थी, और दादी जी को कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी शक्तियां विल की हाथ और दृष्टि से, तो दादी और दीदी दोनों ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 1969 से। और इनकी ये विशेषता थी, दीदी जी और दादी जी, हम कहते दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी, इनकी ये विशेषता थी कि दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा, जैसे एक आत्मा, दोनों ने मिल करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इतना आगे बढ़ाया, जो दिन दुगनी रात चौगनी गति से ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ा। और विदेशों में सेवा केंद्र खुले, यूनाइटेड नेशंस के हम मेंबर बने, और चारों तरफ सेवा केंद्र भारत में भी खुलते गए। और मनमोहिनी दीदी जी ने 1983 में एट द एज ऑफ 74 शी लेफ्ट हर बॉडी, माउंट इन्होंने शरीर छोड़ा। और दादी प्रकाशमणि जी ने इस कार्य को संभाला, उनके साथ अन्य दादियां भी थी, तो 69 से लेके 2007 तक दादी प्रकाशमणि जी चीफ बनी, और एट द एज ऑफ 85 2007 में दादी जी ने शरीर छोड़ा। लेकिन दादी जी के संग ये सब हमारी अन्य वरिष्ठ दादियां थी जो शुरू की आदि की थी, और इन्होंने इस कार्य को इतना आगे बढ़ाया भारत में, विदेशों में। तो विदेश से से 1974 में सबसे पहला ग्रुप माउंट आबू आया। विदेशों में हमारे सेवा केंद्र 70 से जैसे खुलते गए और 74 में लंदन में खुला और वहां का पहला ग्रुप माउंट आबू में आया और ये दादियां हमारे बीच उनके साथ मिली हैं। फिर पांडव भवन के सामने एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको ओम शांति भवन कहते हैं, उसमें यूनिवर्सल पीस हॉल है, वो भी आप देखेंगे, जहां हमारी बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है। 1983 में ये बन के तैयार हुआ था और उसमें यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सल हार्मनी कॉन्फ्रेंस, तो यूनिवर्सल विदेशों से भी आते रहे, यूनाइटेड नेशन से आते रहे, एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन हमने किया था 87 में, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस से कई महामंडलेश्वर आए थे। बहुत सुंदर वो समागम था जिसमें गेरुए वस्त्रधारी और सफेद वस्त्रधारी ये सब महान आत्माओं ने हिस्सा लिया और बहुत ही सुंदर वो सफल रहा हमारा ये हमारी ये कॉन्फ्रेंस। 91 में माउंट आबू में ही पांडव भवन के से 4 किलोमीटर की दूरी पर ज्ञान सरोवर बना, जो हमारी एकेडमी है और उस एकेडमी में अलग अलग विंग्स के कार्यक्रम होते हैं और वहां आप जाएंगे तो स्पार्क विंग का भी अलग प्रभाग है और जो यहाँ पर चल रहा आर्ट एंड कल्चर विंग, ये सब अलग अलग 19 विभाग है, 19 विंग्स है, खास ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ इन प्रोफेशनल विंग्स की ट्रेनिंग हम करते रहते हैं, इनके कोर्सेज चलते रहते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है माउंट आबू में, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये भी 91 में खुला, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमारे डॉक्टर्स आते रहते हैं और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ सब पैथीज है, खाली एलोपैथी नहीं है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये नेचुरोपैथी, साथ साथ सब कुछ है। और ये गांव-गांव में जाते हैं, विलेज आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि यहाँ गांव में बहुत आँखों की बीमारियां हैं, बहुत कुछ है, क्योंकि गर्मी का स्थान है, रेगिस्तान है चारों तरफ, ये ट्राइबल बेल्ट है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट उसमें ये आबू आता है, ये बड़ा ट्राइबल बेल्ट है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो यहाँ के गांव में जाकर के हमारे ये डॉक्टर्स नर्सेस सेवा करती है। यहाँ आबू रोड में भी अपना ट्रॉमा सेंटर है, आई हॉस्पिटल है, नर्सिंग हॉस्पिटल है, बहुत कुछ है यहाँ, अगर आपको समय हो तो आप जरूर ये सब देखना। लेकिन ये माउंट आबू का ग्लोबल हॉस्पिटल है और ये जो शांति वन बना ये 96 में बन के तैयार हुआ, जो सामने का हॉल देख रहे हैं ये 96 में तैयार हुआ और उस समय हमारी डायमंड जुबली, हमारा डायमंड जुबली ईयर था, 60 साल हो गए थे 96 में, 36 to 96, इसलिए ये सामने वाले जो हॉल है, जो हॉल है जहां 20,000 लोग बैठ सकते हैं, उस हॉल को डायमंड जुबली हॉल के नाम से हम जानते हैं। और समय प्रति समय हमारे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं उस हॉल में। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, अभी जो ऑडिटोरियम में हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बाद में पूरा मन मोहिनी वन कॉम्प्लेक्स बना, जो दीदी मन मोहिनी के नाम से है, दादी प्रकाशमणि जी के नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर है जो यहीं पास में है, जहां कुमारियों की ट्रेनिंग, माताओं की ट्रेनिंग होती रहती है, सबकी टीचर्स की ट्रेनिंग। तो दादी प्रकाशमणि जी ने जैसे बताया 2007 में एट द एज ऑफ 85 अपना शरीर त्याग किया और उनकी समाधि आप सामने देखेंगे इस डायमंड हॉल के सामने, जिसका नाम रखा है प्रकाश स्तंभ। तो 25 अगस्त 2007 में दादी प्रकाशमणि जी ने अपना देह त्याग किया और वर्तमान समय दादी जानकी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। आपको आश्चर्य होगा, दादी जानकी जी 98 इयर्स की है और इस एज में भी दादी एक्टिव है, रोज क्लास कराती है, रोज सबसे मिलती है, पता नहीं आप लोगों से कॉन्फ्रेंस, ये टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस कुछ किया नहीं, यहाँ नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ ही है दादी जी, अब वो तो पता मुझे मालूम नहीं ज्यादा, लेकिन आज वो हमारी मुख्य प्रशासिका हैं। और कैसे दादी जानकी जी लंदन में 74 से रहे, और जैसे ही दादी प्रकाशमणि जी अव्यक्त हुए उसके बाद दादी जानकी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, और तब से आप यहाँ रहते हैं, लेकिन विश्व भर में आप जाते रहते हैं। तो ये कुमारियों का प्रशिक्षण हो रहा है, कैसे एक समय पर लगभग 400-500 कुमारियां ट्रेनिंग लेती है, जो फिर टीचर बन करके सेवा केंद्रों पर जाती है। और दादी जानकी जी मासेस में भी लेक्चर्स देते रहे, तो जन जागृति की भी विशाल सभाएं होती है। दादी जानकी के साथ हमारी सह मुख्य प्रशासिका है दादी हृदय मोहिनी जी। दादी हृदय मोहिनी जी इस समय दिल्ली में हैं। दिल्ली में 11 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ ताल कटोरा स्टेडियम में, क्योंकि इस हर साल हम एक कार्यक्रम लॉन्च करते हैं एक थीम लेकर के, और वो सारे भारत में वो थीम के अनुसार हमारे कार्यक्रम चलते हैं। तो इस साल का जो थीम था कि परमात्म शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन, ये थीम को लेकर के ताल कटोरा स्टेडियम में उसका उद्घाटन हुआ, और काफी सारे कुछ वरिष्ठ राजनेताएं भी आए थे, और वो कार्यक्रम आज भी दिखा रहे थे पीस ऑफ माइंड चैनल पर। तो दादी हृदय मोहिनी जी दिल्ली में हैं। आप जब 9 साल की थी तब आप इस संस्था से जुड़ी, अपनी माँ के साथ आई 1936 में, 8-9 साल की थी, और वर्तमान समय आप से मुख्य प्रशासिका है। लेकिन इनकी ये विशेषता है कि जैसे ये आई, इनको बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, अधिकतर सबको हुआ उस समय, और ये बहुत साक्षात्कार अभी भी करती रहती है। और इनका एक मुख्य पाठ है कि शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा कैसे इनके तन में प्रविष्ट होते हैं और वाणी चलाते हैं, वो नजारा ही अलग होता है। हम लोग कैसे उस समय हजारों की तादाद में भाई बहनों को बुलाते हैं, ये डायमंड हॉल भी छोटा पड़ जाता है, खास अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक, अभी अक्टूबर से ये शुरू होगा ये कार्यक्रम, और जब उनकी प्रवेशता होती है तो दादी जी का चेहरा ही बदल जाता। तो अव्यक्त बाप दादा हम उसे कहते हैं, बाप माना परमात्मा शिव पिता, और दादा माना सिंधी भाषा में बड़ा भाई, जैसे दादी बड़ी बहन को कहते हैं, हिंदी में दीदी कहते हैं, सिंधी भाषा में दादी कहते हैं। तो दादा लेखराज के नाम से वो प्रसिद्ध थे, तो बड़ा भाई। तो बाप दादा यानी शिव पिता और ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रविष्ट होकर के वाणी चलाते हैं, और ये हम चैनल्स पर रिले करते हैं। हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी आता है, हो सकता है आप लोगों ने कहीं देखा हो, सुना हो, जिन्होंने देखा है वो हाथ उठाएं, देखिए कितनों ने देखा है। अवश्य आप चाहेंगे कि हम प्रैक्टिकल सामने आकर के देखें, यहाँ डायमंड हॉल में बैठ करके देखें, ये भी आपकी इच्छा होगी, और उसके लिए हम लोग कहते हैं कि कुछ हमारे नियम हैं उन, अभी तो आप आए हो इस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन उसके लिए तो कुछ नियम है, उनका पालन करेंगे तभी आप यहाँ आ सकते हैं। अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, रेगुलर स्टडी, विकारों का त्याग, ये सब कुछ हमारे नियम है, इनको पालन होते ही अवश्य क्यों नहीं आप आ सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो ये है शुरू से अब तक हमारा ये विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।